नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को विकास विरोधी पार्टी करार देते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस ने अपना हित साधने के लिए लोगों को गरीब बनाए रखा। प्रधानमंत्री ने यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के इतिहास वाली परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जंग लगे उस लोहे की तरह है जिसे यदि बारिश में रख दिया जाए तो वह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो वह मध्य प्रदेश को बीमारू बना देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डिजिटल भुगतान का विरोध किया था लेकिन आज पूरी दुनिया UPI से प्रभावित है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने हित के लिए लोगों को गरीब बनाए रखा, जबकि भाजपा के शासन में 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने समृद्ध मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। उन्होंने कहा कि पहली बार मतदान जा रहे मतदाता भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में केवल भाजपा की सरकार देखी जो भारत के विकास के दृष्टिकोण का अहम केंद्र है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक विभाग मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की और वह आगे का रास्ता तलाशने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने हाल में राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार, संबंधित विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा बैठक के दौरान मौलाना आजाद मंडल से संबंधित विषयों, वक्फ बोर्ड, संपत्ति और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। पवार ने याद दिलाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के सत्ता में रहने के दौरान मुस्लिमों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की गारंटी दी गई थी। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों के लिए शिक्षा में आरक्षण की स्वीकृति दी थी लेकिन नौकरी में आरक्षण को खारिज कर दिया था। बाद में समान शिक्षा के लिए सरकार RTI अधिनियम लाई। केरल के कोझिकोड जिले में एक सप्ताह से भी अधिक समय तक निपाह वायरस के संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद सोमवार से जिले के शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गईं। जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की जान जा चुकी है। 16 सितंबर से इसका कोई नया मामला नहीं आया। जिले में सभी शिक्षण संस्थान 14 सितंबर से बंद थे और निपाह वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही थी। राज्य में महामारी की घोषणा 12 सितंबर को की गई थी। जिला प्रशासन ने छात्रों को अपने संबंधित शिक्षण संस्थान जाने के दौरान मास्क पहनने और सैनिटाइजर साथ रखने की सलाह दी। स्कूल प्रशासन ने कहा कि उन इलाकों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी जो अब भी निषिद्ध क्षेत्र घोषित हैं। पटना जिले में खुसरूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक साहूकार और उसके सहयोगियों द्वारा एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटने और उसके मुंह पर पेशाब करने का विभत्स मामला सामने आया। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महिला ने ऋण का पूरा भुगतान करने के बाद भी और धन दिए जाने की साहूकार की अनुचित मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह और उसका बेटा अंशु सिंह फरार है और उनकी तलाश की जा रही है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने दावा किया कि ली गई रकम ब्याज समेत चुकाने के बावजूद उसे प्रताड़ना सहनी पड़ी। पीड़िता ने कहा मेरे पति ने कुछ महीने पहले प्रमोद सिंह से 1500 रुपए उधार लिए थे और हमने ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए थे लेकिन उसने और पैसों की मांग की। हमने इस मांग को मांगने से इनकार कर दिया। ये घटना शनिवार की रात पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सोमवार को सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का केवल एक जुमला भर है और महिलाओं को आरक्षण देने का भाजपा का कभी कोई इरादा नहीं था। तन्खा ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर भाजपा को एक जुमला कहना था और केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने ये कह दिया। उन्होंने कहा अब वे कहते हैं कि जनगणना, सीटों के परिसीमन और आरक्षण के बाद ये अधिनियम वर्ष 2029 में लागू होगा। अब ईश्वर ही बताएगा कि अधिनियम 2029 में लागू होगा या 2039 में। तन्खा ने दावा किया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक इसलिए पेश किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा नए संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। पहले C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान को सोमवार को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया जिसमें सेना के रसद तथा अन्य क्षमताओं में बढ़ावा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यहां हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में C-295 को वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी वायुसेना और एयरबेस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद रक्षा मंत्री सिंह सर्वधर्म पूजा में शामिल हुए जो C-295 को वायुसेना में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।